अच्छा जी, मेरा नाम गज़नफर ज़ैदी है। मेरा ताल्लुक़ तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से है। तो जब इस मुनासबत से मुझसे कहा गया कि एक अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम करना है, तो मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया वो हार्ट अटैक है, दिल का दौरा है। तो इसी पे थोड़ी बहुत गुफ्तगू इस तरीके से आज हमारी होगी कि वजूहात क्या होती हैं, कौन लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं हार्ट अटैक के, पकड़ा कैसे जाए अगर खुदा न करे आपको या आपके घर वालों में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो कैसे आप पकड़ लें उस चीज़ को जल्दी, और जल्द से जल्द उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा सके। कुछ इस तरह से गुफ्तगू हम अपनी समेटेंगे इंशाल्लाह आज। तो सबसे पहले चीज़ के हार्ट अटैक है क्या, दिल का दौरा है क्या। एक चीज़ होती है, एक आम फहम लफ्ज़ है, लेकिन इसके मायने लोगों के जहन में अलग अलग होते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको शक्ल बता दूँ दिल की, कि दिल किस तरह काम करता है। ये सबको अंदाज़ा है कि दिल का काम एक ही है, वो जिस्म में खून के दौरानिए को मेनटेन करना, ये दिल का काम है। तो इसके लिए दिल कंटिन्यूसली 1 मिनट में 70 से ज़्यादा मरतबा धड़कता है और दिल पूरा खून जिस्म में सर्कुलेट हो जाता है। चूंकि दिल इस कदर बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, दिल को भी ताकत और तवानाई की ज़रूरत होती है। यानी दिल को भी एक अलग से खून की सप्लाई होती है जो दिल को तवानाई दे सके, और वो होती है 3 शरियानों की मदद से जो दिल के पट्ठों को सप्लाई कर रहे होते हैं। और इन्हीं शरियानों में खून की मदद से दिल मुसलसल अपना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। अगर खुदा ना करे कोई एक शरियान या एक से ज़्यादा शरियान ब्लॉक हो जाए किसी भी वजह से, उसका खून का दौरान या रुक जाए, तो जिस पट्ठे को वो सप्लाई कर रही थी, जिस मसल तक वो ब्लड ले जा रही थी, वो मसल मर जाएगा। इसे कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के चलें पहले सिम्टम्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि खुदा ना करे किसी को हो तो कैसा फ़ील होता है। तो कहा जाता है कि ये बदतरीन दर्द में से है जो कोई इंसान फील कर सकता है। सीने के बीच में या उल्टी तरफ ये दर्द आमतौर पर महसूस होता है। इस दर्द की नौईयत होती है जैसे कुछ दबाव, कोई बोझ रख दिया गया हो सीने के ऊपर। तो अलग अलग किस्म के दर्द होते हैं, जैसे कोई चीज़ जली, अगर हाथ कहीं जल जाए वो एक अलग दर्द है, कुछ चुभ जाए वो एक अलग दर्द है। तो एक दर्द है जैसे कोई बोझ रख दिया गया हो सीने के ऊपर। ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। इसीलिए ऐसा खुदा ना करे कभी फील हो तो फ़ौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें, इसे इग्नोर मत करें। यह दर्द रुका भी रह सकता है सीने पर, ऐसा भी महसूस हो सकता है कि ये पीठ में दौड़ रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है कंधे तक या जबड़े तक दौड़ रहा है। आम चीज़ें हैं इस दर्द की। और इसी के साथ साथ चक्कर आना, उल्टी आना, ये अलामतें हैं इसी दर्द के साथ साथ। ये अलामतें हार्ट अटैक की हो सकती हैं। पसीने बहुत छूटना पेशानी पे, ये हार्ट अटैक की अलामतें हो सकती हैं। तो ये वैसे इसके अलावा और भी हैं, पर ये बड़े अलार्म फिगर्स हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे माशरे में जो एक बर्डन ऑफ डिज़ीज़ है, जिस एक बीमारी बहुत ज़्यादा है, कोई भी बीमारी, उसकी एक वजह बहुत बड़ी ये है कि हम मेडिकल एड, तिब्बी इमदाद बहुत देर से हासिल करते हैं। हम इंतज़ार करते हैं, हम बीमारी को पालते हैं, और जब तक वो बहुत ख़राब नहीं हो जाती हम अस्पताल नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। थोड़ा इसमें शायद हम लोगों की भी खता है, हम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकें अपने लोगों के अंदर के लोग जल्दी हम तक आ जाएँ। और कुछ इसमें हमारे लोगों की भी गलती है कि वो चीज़ों को सहने को बेहतर समझते हैं, दर्द को मत सहा करें, ख़ासतौर पर सीने के दर्द को। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, हार्ट अटैक को लेकर नहीं। तो ये तो हो गए कुछ अलार्मिंग साइंस ना, मतलब अगर ये खुदा ना करे आपको इर्द गिर्द दिख रहे हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ एक्सक्लूड करनी है वो है हार्ट अटैक है। इन तकालीफ के साथ कोई अस्पताल आता है तो सबसे पहली चीज़ जो एक डॉक्टर रूल आउट करेगा वो हार्ट अटैक है, उसके बाद कुछ और सोचेगा। तो ये बात हो गई हार्ट अटैक के सिम्टम्स की। अब किन लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकता है? यहाँ पे सब मर्द हजरात बैठे हुए हैं और मुझे ज़्यादातर 40+ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, और कुछ एक यंग पॉपुलेशन भी दिख रही है। तो 65 एंड अबव इज़ एन एज रिस्क फैक्टर एक सीवियर हार्ट अटैक के लिए। इस उम्र में हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 50 से कम उम्र है आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हो सकता है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली जो यंगेस्ट जो हमने केस देखा है हार्ट अटैक का, वो 26 साल का नौजवान था। 26 साल का नौजवान, क्यों? क्योंकि वो तकरीबन 11-12 साल की उम्र से रोज़ाना के हिसाब से पैकेट के पैकेट सिगरेट के पी रहा था। तो अभी ये रिस्क फैक्टर्स पे हम आ रहे हैं एक एक करके। तो एक तो हो गई उम्र, ठीक है, अगर आप 60+ हैं, 65 हैं, तो आप एक रिस्क फैक्टर वैसे ही आपका अच्छा खासा है कि आपको अटैक हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी फील हो रहा हो फ़ौरन अस्पताल जाइए। फिर मर्द होना, ये कुदरत की तरफ से ही है। मर्द होने का मतलब है कि आप एट इंक्रीज्ड रिस्क हैं हार्ट अटैक के लिए, औरतों को निस्बतन कम हुआ करते हैं। फिर अब कुछ ऐसी चीज़ों पे आ रहा हूँ जिस पर इख्तियार है। शुगर होना, शुगर का मर्ज दिल के अटैक के लिए एक रिस्क फैक्टर है। शुगर का मर्ज स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर है। शुगर का मर्ज गुर्दों के ख़राब होने के लिए रिस्क फैक्टर है। यानी जगह जगह इन्वॉल्व करता है। ये ऐसी चीज़ है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। किसी को शुगर है तो वो दवाइयाँ मुसलसल लेता रहे, अपनी डाइट ठीक रखे, तो शुगर से होने वाले नुकसान उसे नहीं होंगे, जिनमें से एक हार्ट अटैक। ब्लड प्रेशर टॉप पे जो रीजंस है ना हार्ट अटैक के, वो यही है, शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह ख़राब होना। शुगर का बता दिया, ब्लड प्रेशर का भी बिल्कुल यही है, ये एक मर्ज़ है। चलें थोड़ा इस पर यहाँ पर गुफ्तगू कर ही लूँ। ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पर, उनसे मैं बात कर रहा हूँ अगर यहाँ हैं या घर पर हैं, एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हम पैनाडोल कब लेते हैं, जब सर में दर्द हो, जब बुखार हो। ऐसे आम रोज़ पे आप पैनाडोल नहीं लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको रोज़ पैनाडोल लेनी है, तो आप कहेंगे कि इस डॉक्टर को कुछ आता नहीं है, ये बिला वजह की दवाई खिला रहा है मुझे। यही मसला है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ दवा नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है। ये एक बहुत गलत सोच है, अगर आपके जहन में है तो मैं इसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके जिस्म के पास कोई तरीका नहीं है ये बताने का कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब लोगों को लगता है ना कि मैं सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, ये एक आम चीज़ है, आम फहम जुमला है ये, ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि आपका सर में दर्द हो रहा होता है इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। आपको कोई चोट लग जाए, आपको बुखार हो जाए, इन तमाम चीज़ों में आपके जिस्म का नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपके जिस्म के पास कोई तरीका नहीं है कि आपको बता सके कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और ब्लड प्रेशर के बढ़े होने से जो सर का दर्द होता है ना, वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। वो उस पर ब्लड प्रेशर बिल्कुल स्काई रॉकेट किया हुआ होता है जब उसकी वजह से सर दर्द होता है। तो इंतज़ार मत करें, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। आपको कुछ दवाएँ हैं जो ज़िंदगी भर लेनी है, उन्हें रोकना मौत को दावत देना है। क्योंकि इनको हम कहते हैं शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ये साइलेंट किलर्स हैं, ये खामोशी से मारने वाले असैसिन्स हैं। इनसे होने वाले जो नुकसान है वो बहुत देर से पता चलते हैं, बहुत देर से पता चलते हैं, और फिर अक्सर वापस जाने की गुंजाइश कम रह गई होती है। तो खैर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है हार्ट अटैक के लिए, अगेन गुर्दों के डैमेज के लिए, सर में किसी शरियान के फट जाने के लिए, स्ट्रोक हो जाने के लिए, फालिश का अटैक जिसे कहते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्पेक्टर है। इसे कंट्रोल किया जा सकता है, शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को दवाओं के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, हमारी ग़िज़ा, अब मैं नहीं जानता कि आप लोगों की ग़िज़ा अभी इस वक्त घर में कैसी है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी ग़िज़ा ख़राब ही हुई है, बेहतर नहीं हुई है। एक लफ्ज़ है कोलेस्ट्रॉल। अब एक तो हमारे माशरे में थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि हम चीज़ों को बिल्कुल रेड और ग्रीन में देखते हैं, या बिल्कुल अच्छी है या बिल्कुल ख़राब है। हकीकतन ऐसा नहीं है, कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि हर चीज़ की हमें ज़रूरत है, पर म्यान रवि के लिए कहा गया है। तो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जो लोग अपने जिस्म से बिल्कुल चिकनाई को, फैट को हटा देते हैं, वो अपने जिस्म के साथ बुरा कर रहे हैं, उनके सेल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। एक एक सेल को ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल की, लेकिन एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर। मैं मिसाल दे देता हूँ, मछली के अंदर जो तेल पाया जाता है वो बहुत अच्छा तसव्वुर होता है। तो हफ्ते में एक मछली का कंज्यूम करना एडवाइज्ड है बाहर की गाइडलाइंस में। ज़ाहिर है कि हर हमारे पॉसिबल नहीं है इस तरह का, जिसका मतलब तेल बुरा नहीं है, तेल का टाइप, कौन सा तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे ताल्लुक इस चीज़ का। जैसे मक्खन मिसाल के तौर पर, इसी तरीके से घी हो गया, ये उस किस्म के तेल हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए बुरा है। पर यही कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये ऑयल्स बेहतर हैं। कोशिश करें घर में अगर घी में खाना पकता है तो वेजिटेबल ऑयल में खाना पकने लगे, लेकिन ऑयल दूर नहीं करना है डाइट से, बस कम करना है। तो ये चंद बड़े बड़े रिस्पेक्टर्स हैं जो कि हार्ट अटैक करवा सकते हैं। इसके बाद एक रिस्पेक्टर ख़ुद मौसम भी होता है। सर्दियों में हमने देखा है आमतौर पर अंजाइना और सीने के मर्ज़ और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस वजह से आमतौर पर इसी मौसम में अगर आप जाकर किसी भी कार्डियक सेंटर को देखेंगे, खुद हमारे तब्बा अस्पताल आ जाएँ, तो आपको भरा हुआ मिलेगा ये। तो अपने आप में एक रिस्पेक्ट है, तो थोड़ा एहतियात करने के लिए। मौला का भी कॉल है कि सर्दियों के शुरू में उससे एहतियात करो, बाद में उसको मनाओ। वो ये चीज़ें बड़ी साइंटिफिक हैं इन चीज़ों के पीछे, ये सिर्फ वे ऑफ लाइफ नहीं है, इनके पीछे पूरी साइंस है जो अब खुल रही है हमारे सामने, अब आ रही है। तो ये चंद चीज़ें होंगी मोटी मोटी जो रिस्क फैक्टर हम शुमार करते हैं कि अगर ये किसी के साथ हैं तो वो एट इंक्रीज रिस्क है एक आम आदमी। जैसे मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की एक आपको बता दूं, सर के शरियान फट जाना, स्ट्रोक हो जाना, फालिज हो जाना, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसके अंदर ये होने के चांसेस चार गुना से छः गुना ज़्यादा हैं उस आदमी के मुकाबले में जिसे ब्लड प्रेशर नहीं है। छः गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे हार्ट अटैक होंगे उस आदमी के मुकाबले में जिसे ब्लड प्रेशर नहीं है। तो अगर आपको डायग्नोज हो गया ब्लड प्रेशर, नुकसान ब्लड प्रेशर आपको सिर्फ तब करेगा जब आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे। आप दवाएं लेते रहें, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, दवा लेना रोक दी, अब वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, वो अपना नुकसान करता रहेगा, और अल्टीमेटली फिर इस किस्म के ख़तरनाक और बहुत ही भयानक इंसिडेंसेस होते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या रीनल शट डाउन हो गया, किडनीज जवाब दे गए, डायलिसिस पर शिफ्ट हो गए, ये सब होती इन चीज़ों की वजह से। तो ये तो बात हो गई कि हार्ट अटैक है क्या। हमने पहली बात ये कि हमने कहा कि दिल के पट्टों तक खून की सप्लाई का रुक जाना, इसकी वजह से पट्टों का मर जाना, ये हार्ट अटैक है। किन लोगों में होता है, हमने चंद चीज़ें गिनी कि भाई मर्दों में ज़्यादा चांसेस हैं, 65 के बाद चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसे मर्ज़ अगर साथ हैं चांसेस ज़्यादा हैं। अब सवाल ये कि बचना कैसे इनसे, तो कुछ चीज़ें तो हमने रिस्क फैक्टर्स में गिनवा ली, भाई ब्लड प्रेशर से बचे रहें। ब्लड प्रेशर किन्हें होता है, अगेन ब्लड प्रेशर के लिए मर्द होने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक उम्र में ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी फिर यही सारे जो ये रिस्क फैक्टर्स ना एक दूसरे के साथ ओवरप्ले रखते हैं, अब एक चीज़ ख़राब करते हैं दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है, लिंक करती है अल्टीमेटली वो एक बड़ी डिजीज़ को। तो चंद लाइफ स्टाइल्स की बात कर रहा हूँ, अगर ये लाइफ स्टाइल इस तरह से गुजारे जाएँ तो उम्मीद होती है कि ऐसे इंसिडेंट्स कम होंगे। अच्छा, मैं प्रिकॉशंस पे जाने से पहले, चूंकि मुझे पता नहीं कि आप लोगों का सेटअप ये किस तरह होता है, ये मोनोलॉग होता है या डायलॉग करते हैं आप लोग? ओपिनियन मैं ही मुसलसल बोलता रहूं? अच्छा, वैसे ये आदत मेरी है नहीं इस तरह बोलने की, तो अगर आप बीच में कुछ पूछना चाहें तो आप हाथ खड़ा करके सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जिसके ज़रिए आप दिल के अमराज या बाकी भी जिस्म के अमराज से बच सकते हैं, उनमें चंद चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमन सेंस वाली हैं, किसी डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह की वर्जिश, अब अगर आदाद व शुमार में देखा जाए, नंबर्स में देखा जाए, तो सिर्फ अगर कोई बंदा दिन के 20 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज कर रहा हो, यानी वॉक कर रहा हो, थोड़ा सा उसमें उसका पसीना निकल जाए, थोड़ा सा उसमें दिल की धड़कन उसे तेज़ महसूस हो, इस तरह की वॉक अगर कोई दिन में 20 मिनट की भी कर रहा हो, तो वो अपना ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, मुझे उम्मीद है कि जहन में ये है आप लोगों के जहन में कि ब्लड प्रेशर दो नंबरों से मिलकर बनता है, कहते हैं ना ऊपर वाला नीचे वाला 120-80, 140-90, इस तरह से ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स होती हैं। तो मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ जो मेन मेजर है डिजीज़ का। अगर सिर्फ कोई इतनी एक्सरसाइज कर रहा हो तो एक्सपेक्टेड है कि उसका तकरीबन 10 के आसपास ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, कुछ और ना करे, कोई दवा ना ले, कुछ भी और ना करे, सिर्फ अगर इतना ऐड करे 4 से 9, 4 से 10 के आसपास ऊपर वाला रीडिंग कम हो सकती है। इसी तरीके से अगर नमक का इस्तेमाल कम किया जाए, हमारे माशरे में ये बड़ा मसला है जो भी सामने आ रहा है रिसर्च में कि हम लोग नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग ईरानियों के मुकाबले में नमक का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, नमक अपने आप में आपके लिए जहर है, ज़बान का चरखारा ज़रूर है, पर नमक के साथ पानी मूव करता है। यूँ एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ आपको, जहाँ नमक ज़्यादा होगा वहाँ साथ साथ पानी खींच के आ जाएगा उस नमक की तरफ। तो अगर आपके खून के अंदर नमक ज़्यादा होगा तो खून के अंदर पानी खींच के आ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या है, खून की नालियों के अंदर जो प्रेशर है वही है ना, आप किसी भी नाली में पानी ज़्यादा जमा कर दें उसका प्रेशर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नमक का इस्तेमाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली लिंक्ड है ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उन्हें कहा जाता है कि भाई नमक का इस्तेमाल जितना कम हो सके कम कर दो। तो आम ज़िंदगी में भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अपने घर में अगर आपको लगता है कि आप किसी के घर मेहमान गए और वहाँ आपको लगा कि नमक खाने में बहुत कम है इनके, तो शायद अब असेस करने की ज़रूरत है, मेरे घर में ज़्यादा पड़ रहा है शायद नमक, तो नमक का इस्तेमाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म कर दें, मैं कह रहा हूँ कम कर दें, जितना कम आपके मजाक जितना टेस्ट के हिसाब से आप कम कर सकें करें। एक्सरसाइज हो गई, नमक का हो गया, फिर बाकी ये तमाम चीज़ें कि डायबिटिक कंट्रोल, शुगर आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए, और शुगर कंट्रोल करना मुश्किल चीज़ नहीं है। शुगर क्यों बढ़ती है, शुगर का कम होना ये तो नेचुरल है, कुदरती है, आप खाना ना खाएं आपकी शुगर कम हो जाएगी, ये तो नेचुरल है। शुगर बढ़ती सिर्फ एक वजह से है, हम डाल रहे हैं, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, जब तक हम कोई मीठी चीज़ नहीं खाएंगे हमारी शुगर बढ़ नहीं सकती। जिस्म के पास कोई तरीका नहीं है डायरेक्टली शुगर बढ़ाने का, जिस्म शुगर कम करना है तो जानता है, इस्तेमाल कर लेता है, बढ़ाना नहीं जानता। तो हम जो ग़ज़ा खाते हैं उससे हमारी शुगर ऊपर या नीचे होती है। अगेन बहुत सारे लोग ये फैसला करते हैं कि भाई नहीं, हमारे लिए जो टेस्ट है वो ज़्यादा अहम है, और वो फिर ये तमाम चीज़ें देखते हैं जो हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। पर अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, जो चीज़ें आपके लिए गलत हैं, मैं डायबिटिक्स के लिए कह रहा हूँ, जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो शुगर के मरीज़ हैं उनसे कह रहा हूँ, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए जहर हैं, ये जानते हुए खाइए उन्हें कि आप जहर खा रहे हैं, फिर आपकी दवाएँ साथ साथ चलेंगी ताहयात, आपको लेते रहना है, आपने जिस दिन लेना छोड़ी उस दिन उसी दिन से आपकी शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसे कंट्रोल करने का ये तरीका है, दवा लें, एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट कंट्रोल करें। कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर चुके, किस किस्म का तेल का इस्तेमाल ज़रूरी है, तेल का इस्तेमाल कोई मना नहीं कर रहा, पर एक कंट्रोल में रख करके। तो ये चंद चीज़ें ये एहतियाती तदाबीर हैं जिसे अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे تو چانسز کم ہیں کہ ہارٹ اٹیک یا اسٹروک جیسی چیزیں ہوں گی. اب ان سے تھوڑے, یہ تو مین اسٹڈیز ہیں جن پہ بہت باہر مغرب میں اسٹڈی ہو چکی ہیں اور ہمیں اس تک انفارمیشن آ گئی. اب کچھ چیزیں جس پر ابھی اسٹڈیز تھوڑی کم ہیں لیکن اچھا پرومس شو کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں بھی بندہ لائف میں صحیح کر رہا ہو تو اس کے چانسز کم ہوں گے اس امراض کے. ان میں سے ایک بہت اہم چیز ہے نیند. اور نیند کا اتنا گڑبڑ مسئلہ ہے یہ کہ ہم مطلب ہماری عمر سے ہی یا مطلب مجھ سے بھی اور آپ 10 سال پہلے چلے جائیں انٹر وغیرہ کی عمر سے ہی ہم بچوں کی عادت یہ بنا دیتے ہیں کہ بیٹا رات میں جا کر نہیں پڑھو گے تو ایگزام میں رزلٹ نہیں لاؤ گے. اچھا جبکہ ہمارے جو دادا وغیرہ تھے ان کی پریکٹس یہ تھی کہ ایگزام سے ایک دن پہلے سویا کرتے تھے. مطلب ایک تھا یہ ٹرینڈ. مطلب میرے اپنے چچا نے مجھ سے اگر کہا کہ میں اپنے جو میرا کزن ہے اس سے میں بات کروں کہ وہ جاگ نہیں رہے رات میں تو اب رزلٹ کیسے لائے گا. یہ بڑی خراب پریکٹس ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک عادت بن جاتی ہے رات میں دیر تک جاگنے کی اور صبح تو اٹھنا ہے ٹائم پہ, پھر آپ کی نیند کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ڈائریکٹ ریلیشن شپ ملا ہے کم نیند کا بلڈ پریشر کے ساتھ, ڈائبٹیز کے ساتھ, اسٹریس ریلیٹڈ بیماریوں کے ساتھ. ڈائریکٹ ریلیشن شپ ملا ہے ان چیزوں کا. تو نیند ٹھیک رکھیں, اپنی غذا ٹھیک رکھیں تو انشاءاللہ اس قسم کے امراض ہونے کے چانسز کم ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے نا تو ڈاکٹر کچھ بھی کر لے وہ آپ کا علاج نہیں کر پائے گا. یہ حقیقت چیز ہے. تو غلطی ہماری بھی ہے, یہ جو کیپٹلسٹ انوائرمنٹ ہمارا ہے کہ بھائی جیب بھرو ہر بندہ کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کچھ الگ سے غلط کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے بیچ سے ڈاکٹر اٹھیں جو عام طور پہ آپ لوگ کر رہے ہیں, مطلب آپ صبح جاتے ہیں جاب کرنے نکلتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں نا بھائی کہ جیب میں پیسہ آ جائے, وہ بھی یہی کر رہا ہے. اس میں مسئلہ ہو رہا ہے, میں مانتا ہوں اس میں مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن پلیز اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں انہیں ڈھونڈیں اور ڈاکٹرز کے لوپ سے آؤٹ مت رہیں. ڈائبٹیز کا ایک زمانہ تھا جب شوگر کا مرض صرف اور صرف جنرل پریکٹیشنر دیکھا کرتا تھا. اب ہمارے پاس اینڈوکرینالوجسٹ ہیں. اینڈوکرینالوجی اسپیشلسٹ فیلڈ ہے جس میں شوگر کے امراض دیکھے جاتے ہیں, جس میں جو تھائرائڈ ہوتا ہے غدود جو گردن میں ہوتے ہیں اس کے امراض دیکھے جاتے ہیں, جس میں اور بھی گلینڈز اس طرح کے امراض دیکھے جاتے ہیں جو یہ کانسٹیٹیوٹیو کنڈیشنز کہلاتی ہیں. تو اینڈوکرینالوجسٹ اب بن رہے ہیں, ہمارے پاس اچھے اینڈوکرینالوجسٹ آ رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے ہی سرکل کے اندر ہمارے مومنین حضرات میں وی آر ویری گڈ اینڈوکرینالوجسٹ. تو لوپ سے باہر رہنا بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ بیماریاں یہ سائلنٹ کلرز ہیں, خاموشی سے مارتی ہیں, یہ بتاتی نہیں ہیں. جب تک پوری طرح نقصان کر چکی ہوتی ہیں تب پتہ چلتا ہے. جیسے گردے ہیں, گردے بڑے اچھے آرگن بنائے اللہ نے, گردوں پہ بہت لوڈ ڈالا جا سکتا ہے اور گردوں کو آپ کو فیل نہیں ہونے دیں گے. اس کا نقصان کیا ہے, وہ ڈیمیج ہو رہا ہے پتہ دیر سے چلتا ہے. 25% پہ جب گردے جا کے گر جاتے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی او یہ کیا ہو گیا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں لوپ میں رہنا ضروری ہے. اپنی طرف سے آپ کوشش کریں, اپنی طرف سے ہم کوشش کریں, انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا. میں مغرب میں دیکھ کر کے آیا ہوں, میں وہاں دیکھ کر کے آیا ہوں میڈیسن کس طرح پریکٹس ہوتی ہے, اور یہاں جو میڈیسن پریکٹس ہو رہی ہے وہ بالکل بھی قابل تعریف نہیں ہے. میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں میڈیسن کو, پر دیکھیں یہی ہے میڈیسن آپ کے پاس. دیکھیں وہ تو ایک ہی غلط, اس کی تو وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے اسلام لے لیا پر اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حقیقتاً تو یہ ہے کہ بھائی تہجد پہ اٹھنے کی پریکٹس ہونی چاہیے, اور وہ پریکٹس بنانے کے لیے آپ عشاء کے آس پاس سو رہے ہوں گے, عشاء کے بعد سو رہے ہوں گے, یہ چیز ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ مغرب میں یہی ہو رہا ہے, وہ اندھیرے میں جاگتے ہیں, وہ سورج نکلنے کے بعد تھوڑی نہیں جاگتے ہیں, وہ ڈے لائٹ سیونگ کی انہوں نے جو آپ کے یہاں بھی ہوئی تھی کہ بھائی ٹائم جو تھا گھنٹے بڑھا دیے گئے. تو ہمارے یہاں کیا ہوا, پرانا وقت نیا وقت. ہم وہ قوم ہیں حقیقت میں, دیکھیں نا اپنے گربان میں جا کے. آپ کی مارکیٹ صبح 11-12 بجے کھلتی ہیں, دس از ہو وی آر نا. صحیح اٹھنے کا وقت یہ کہ آپ سورج سے پہلے اٹھ جائیں. اب سورج سے پہلے اگر آپ اٹھے ہوئے تو جنرلی آپ کی باڈی کا انرجی لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے. چونکہ چلیں آپ نے سوال کر لیا تو اس کا جواب دے دوں, ہمارے جسم کے اندر کچھ کیمیکلز اللہ نے اس طرح رکھے ہیں جو گھڑی کے حساب سے بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں. رکیے, آواز آ رہی ہے میری؟ تو کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو گھڑی کے حساب سے بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں. ان کے بڑھنے اور کم ہونے کے اوقات ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہم میچ کر لیں اپنے ڈیلی لائف کے اندر تو ہم ہیلدی بھی رہیں گے اور ہماری صحت برقرار بھی رہے گی. اچھا جی, اور وہ اگر آپ مزے کی بات ہے اگر وہ آپ میچ کریں تو نماز کے اوقات سے میچ ہو جاتے ہیں. تو ایک اگر آپ مجھ سے حل مانگ رہے ہیں تو آئیڈیل حل تو یہی ہے کہ بھائی آپ نماز کے اوقات کے حساب سے اپنے ٹائمنگ سیٹ کر لیں. لیکن اب آج کل کی پریکٹیکل دنیا کے اندر کیا کریں, تو یہ ہے کہ بھائی کوشش کریں کہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ابھی تک اسٹڈیز نے زیادہ تر بات کی ہوئی ہے کہ 6-7 گھنٹے کی نیند ضروری ہے ہر ینگ بندے کے لیے, اور جتنا آپ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کی نیند نیچرلی کم ہوتی چلی جاتی ہے, وہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اور جو ایک کوشچن ہے کہ نیند کتنی صحیح ہے نیند کتنی غلط ہے, یہ بڑی ایک ویریئنٹ بات ہے दुनिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हम बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, हर किसी के लिए एक नंबर नहीं हो सकता। तो बजाय ये जानने के कि नींद कितनी ज़रूरी है, आप सुबह उठ के अपने आप से सवाल करें, मैं फ्रेश हूँ या नहीं हूँ। आपको सुबह उठना चाहिए फ्रेश, आपको सुबह उठना चाहिए मोटिवेटेड। आप सुबह उठ के फील कर रहे हैं कि नहीं मुझे अभी और सोना है एक घंटा, मुझे और थकावट हो रही है। अच्छा, अब इसका भी बता दूँ तो इसका ताल्लुक कभी कभी घंटों से नहीं होता। कभी कभी होता है ना, हम 8-9 घंटे सो जाते फिर भी थके हुए उठते हैं। इसका बहुत हद तक ताल्लुक और चीज़ों से भी है। तो स्लीप की भी स्पेशलिस्ट हैं, मैं एक्चुअली काम कर चुका हूँ एक के साथ जिनका स्पेशलिटी है स्लीप। तो पता चला, अच्छा भाई ये चीज़ें हैं जो स्लीप के वक्त, स्लीप अगर सही ना हो तो कितना चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं लाइफ में, हम देख रहे हैं। तो एक उसमें से एक कॉमन चीज़ जो मेरे ख्याल में लोगों की नींद को ख़राब करती है वो ये है कि हम रात का खाना बहुत देर से खाते हैं और सोते हैं खाने के जल्दी फ़ौरन थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। कोशिश करें 3 घंटे का फ़र्क हो आपके खाना खाने और आपके सोने में, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं वो पेट में खाना जाता है, तेज़ाब उसको खाने को तोड़ता है, अब वो एक पेस्ट लाइक बन जाता है। जैसे आप लेट जाते हैं तो ये अक्सर होता है जिनको लोगों को तकलीफ़ होती है कि उन्हें एसिडिटी फील होती है, तेज़ाबियत फील होती है, और ये तेज़ाबियत सोने नहीं देती है, एक पुरसकून नींद नहीं आने देती है। बहुत सारी वजूहत है, मैं एक बता रहा हूँ आपको। तो कोशिश करें अगर आप ये चीज़ कर लें कि नींद का वक्त अपना बांध लें और खाने का वक्त उसके हिसाब से बांध लें कि 3 घंटा कम से कम हो खाना खाने और सोने में, तो एक फैक्टर है जो बेहतर हो सकता है। दूसरा ये कि कोशिश करें कि रात का खाना छोटी ग़ज़ा हो, दिन की सबसे बड़ी ग़ज़ा नहीं होनी चाहिए रात का खाना। वो है ना, वो ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स और लंच लाइक प्रिंसेस एंड डिनर लाइक बेगर्स, वो किसी हद तक सही है। कोशिश करें कि आखिरी ग़ज़ा आपकी छोटी हो और सुबह की ग़ज़ा आपकी बड़ी होनी चाहिए। सेंस बनाता है कि भाई रात को तो सोना है, पेट में खाना जाकर क्या करेगा, अभी दिन में पूरा काम करना है, तो उस वक्त की ग़ज़ा अहम है। चूंकि आपने स्लीप के बारे में पूछा इसलिए मैंने चंद गुफ्तगू कर ली, ये इससे थोड़ा सा हम आगे चले गए। कोई और सवाल अभी तक की जो गुफ्तगू हुई इससे लेकर आपके जहन में अगर कोई सवाल? अच्छा चले चले फिर, अब ये सेशन हमारे आखिरी इसके इस पर आ गया कि इसकी मैनेजमेंट क्या होती है हार्ट अटैक की। सही, अगेन अब चूंकि इससे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरा है तो मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाह रहा हूँ पर्सनल लेवल पे। मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि लोग फैसला लेने में बहुत देर करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं और आपको डॉक्टर कह रहा है कि सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, अभी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, आप कभी मना मत कीजिएगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। हॉस्पिटल में जब हम लोग होते हैं तो हमसे लोग यही सवाल करते हैं और हम उनको एक जुमला कहते हैं कि जब मैं ये कह रहा हूँ सीवियर हार्ट अटैक किसी को अगर हुआ, देखिए अगर किसी को खुदा ना करे अभी सीवियर हार्ट अटैक होता है 10 लोगों को, 5 उनमें से अस्पताल नहीं पहुंच सकेंगे, अगर अस्पताल अगली गली में भी हुआ नहीं पहुंच सकेंगे। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं, आदाद शुमारी कहते हैं 50% जिन्हें सीवियर हार्ट अटैक होता है वो नहीं पहुँच पाते हॉस्पिटल। जो 50% पहुँचते हैं उनमें से भी अगर उनको पूरा ट्रीटमेंट मिल जाए तो उनमें से भी आधे हैं जो बच नहीं पाएंगे, ये आदाद शुमार हैं। तो जब आप हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर आपसे कहे कि भाई एक सीवियर हार्ट अटैक है, हमें फ़ौरन एंजियोप्लास्टी करनी है, देर मत करें। अपने किसी रिश्तेदार से जिसकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है उससे मशवरा हासिल करने के लिए रुके मत। आपका डॉक्टर बेहतर जानता है, वो अपने सामने मरीज़ को देख रहा है। कभी किसी, फ़िलहाल कराची में किसी सेटअप में ऑलमोस्ट मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा कि एंजियोप्लास्टी के लिए ज़बरदस्ती करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑलरेडी बहुत लोड है इन ट्रीटमेंट्स का। अपना पैसा बनाने के लिए हॉस्पिटल करता है, ये चीज़ें जहन में बैठी रहती हैं लोगों के, मैं वो दूर करना चाह रहा हूँ कि प्रोसीजर ऑलरेडी करवाने वाले इतने, ये हार्ट अटैक्स इतने आ रहे हैं कि उन्हें मज़ीद ज़रूरत नहीं है किसी और को एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कराने की। लेकिन अगर आपसे कह रहा है डॉक्टर तो बहुत बड़ा चांस है कि अगर आप नहीं कराते हैं तो 3 दिन या हफ्ते भर के बाद चीज़ बहुत बुरी हो सकती है उससे। तो ट्रस्ट योर डॉक्टर्स। तो हार्ट अटैक बेसिकली अलग अलग तरह के होते हैं, ये डॉक्टर बेहतर समझा सकते हैं आपको। अगर खुदा ना करे किसी, आप अस्पताल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो डॉक्टर ये कह रहा है हार्ट अटैक है, अगर मिसाल के तौर पर अटैक होता है और आप हॉस्पिटल लेकर पेशेंट को पहुंचते हैं, पेशेंट की एंजियोग्राफी होती है, तो एंजियोग्राफी क्या होती है चले थोड़ा सा बता दें। अभी हमने शुरू में बात की थी ना कि पट्ठों को खून की सप्लाई चाहिए होती है ताकि पट्ठे कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकें, जिसम के अंदर खून मेंटेन कर सकें, और यही ये खून की सप्लाई 3 शरियानों से मिलती है। 3 शरियानों में से कोई भी ब्लॉक को अटैक हो सकता है। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि भाई कितनी ब्लॉक है, कहाँ ब्लॉक है, इसके हिसाब से इसमें स्टेंट भी डाला जाता है, इसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। कभी कभी सिर्फ फुला के छोड़ दिया जाता है, बलूनिंग कहते हैं। कभी कभी ये नहीं कर सकते, सर्जरी करना होती है जिसे बाईपास कहते हैं। ये एक ही अमराज के अलग अलग मैनेजमेंट है डिपेंडिंग ऑन कि मर्ज कितना शदीद है और कहाँ है। ये चीज़ें अगेन इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आता है और मैंने देखा है कि ट्रस्ट बहुत मिसिंग है पेशेंट्स के अंदर, और अक्सर इसका नुकसान जो होता है वो मरीज़ को हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट आमतौर पर अपने डिसीजन नहीं ले रहा होता, उसके फैमिली मेम्बर्स ले रहे होते हैं। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस उस वक्त होना ज़रूरी है कि आप सही फैसला लें, डॉक्टर को ट्रस्ट करें। लेकिन सबसे अहम चीज़ देखिए मैनेजमेंट में ये है, अच्छा हाँ सॉरी ये गुफ्तगू पहले कर लेना चाहिए, सबसे अहम चीज़ जो मैनेजमेंट में हुई है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स बता रहा है जिनके हमने अभी तस्करा किया, तो इंतज़ार मत करें, देखने का इंतज़ार मत करें कि आप ठीक हो, शायद थोड़ी देर में बेहतर हो जाए। ये जो कार्डिनल सिम्टम्स बताए मैंने, सीने पे बोझ महसूस होना, अगर ये पीछे पीठ में दौड़ रहा है, जबड़े में दौड़ रहा है, पसीने छूट रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, ये सब चीज़ें होना भी ज़रूरी नहीं है। एक भी चीज़ इसमें से हो रही है, इनफैक्ट एक हार्ट अटैक का सिम्टम ये है कि एकदम से बंदे को बहुत शदीद कमज़ोरी आना शुरू होना, ये भी और कुछ ना हो, इनमें भी हार्ट अटैक्स डायग्नोज हुए हैं। तो बजाय खुद घर में डायग्नोज करने के ले जाएं हॉस्पिटल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं निकलेगा कुछ, अच्छी बात है, लेकिन पहुँचें हॉस्पिटल ताकि मैनेजमेंट मिल जाए, खुदा ना करे अगर कोई बड़ी चीज़ हो। डायबिटिक्स जो हैं जिन्हें शुगर का मर्ज़ होता है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रखी होती है, उनमें अक्सर हार्ट अटैक में सीने में दर्द नहीं होता और वो इग्नोर कर रहे होते हैं बाकी सिम्टम्स को, ये सोचते हुए कि भाई सीने का दर्द तो ज़रूरी है हार्ट अटैक के अंदर, पर डायबिटिक्स के अंदर हार्ट अटैक अक्सर देखने को मिला है ऐसा जिसमें दर्द नहीं होता। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस किस्म के जो सिम्टम्स हैं, जो इशारे हैं, इन पर अपना अलार्म थोड़ा आपका बड़ा रहना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। खैर अब अगर किसी को आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है तो आप क्या करें, गाड़ी निकालें, हॉस्पिटल पहुँचें, ये जनरली ये गलत एडवाइस है। अपनी गाड़ी पर पहुँचने की कोशिश मत करें, कोशिश करें कि एम्बुलेंस पर पहुँचें, क्योंकि एम्बुलेंस आपको इनिशियल, अगर उस वक्त कुछ इनिशियल ज़रूरत हुई, क्योंकि हार्ट अटैक एक बहुत शदीद चीज़ है, उसके मिनट्स में लिटरली हार्ट अटैक अनफोल्ड होना स्टार्ट करता है, अपने असरात दिखाना शुरू करता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई पेशेंट को फ़ौरन हेल्प चाहिए जो कि आप नहीं दे सकेंगे, पर अगर एम्बुलेंस मंगाई है आपने, खासतौर पर अमन की एम्बुलेंस अगर आपने मंगाई है, तो उसके अंदर एक पैरामेडिक स्टाफ बैठा होगा जो इनिशियल उसकी हेल्प कर सकेगा। इस पर काम हो रहा है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि कार्डियो वगैरह का बड़ा एक्सपेंशन हो रही है, कार्डियो इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिन्हा के साथ में है ये सबसे बड़ा सेटअप जो इस वक्त कार्डियोलॉजी का है, वो NICVD है, और अल्लाह का शुक्र है अब उसमें बहुत फंड्स आए हैं, तो अब हर चीज़ फ्री हो रही है। मतलब यूँ समझिए कि 3 लाख 3.5 लाख की एंजियोप्लास्टी फ्री में कर रहे हैं, 8-8 लाख की एंजियोप्लास्टी फ्री में कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी हमारा लोड बचा है उनकी वजह से। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेटेलाइट सेंटर्स बनाए, मेरे ख्याल में यहाँ पे मली रोड पे है, एग्जैक्टली मली रोड पे एक सेंटर है, ऐसा आपको लगता है फ़ौरन वहाँ पहुँच जाए, वहाँ कोई ना कोई ज़रूर डॉक्टर बैठा होगा और डायग्नोस करेगा, नहीं हुआ कुछ गुड भाई वापस घर आ जाएंगे, पर अगर कुछ हुआ हेल्प मिल जाएगी। और कोशिश करें वहाँ तक जो पहुँच रहे हैं एम्बुलेंस में पहुँचें, आने वाले वक्तों में चीज़ थोड़ी अच्छी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, एम्बुलेंसेज पहले से इन्फॉर्म कर दिया करेंगी, एम्बुलेंस में ECG हो जाएगी, एम्बुलेंस में ही इन्फॉर्म हो जाएगा, वहाँ कैथ लैब रेडी हो जाएगी ताकि पहुँचते ही एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सके। बाहर ऐसे ही होता है, मगरब में ऐसे ही होता है, और इससे कितनी जानें हैं जो बची हैं, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है आप लोगों के यहाँ पे सेशंस किस तरीके से हुए रखें, आप में से कितने लोग हैं जो CPR समझते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं CPR, और कौन है? देखिए ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। CPR क्या है? अगर किसी का दिल धड़कना रुक जाए, दिल धड़कना, नब्ज़ फील करने कुछ नहीं आ रही, तो उसके सीने पर कंप्रेशंस देना, मूवीज़ वगैरह में तो देखा होगा, ये CPR कहलाता है। CPR किसी डॉक्टर की चीज़ नहीं है, CPR किसी नर्स की चीज़ नहीं है, CPR हर बच्चों को आना चाहिए CPR, और है एक कोशिश, देखिए आप लोग दुआ करें कामयाबी मिले, हम लोग स्कूल के लेवल पे लाना चाह रहे हैं कि हम CPR की ट्रेनिंग दें, कॉलेजेस में CPR की ट्रेनिंग दें, मैं खुद रहा हूँ इंस्ट्रक्टर तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, आप लोगों को सबको CPR आना चाहिए, कोई आपके सामने खड़ा हुआ एकदम सीना पकड़ के गिर गया क्या करेंगे आप? तो उस बीच में और एम्बुलेंस के आने के बीच में ज़िंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा, अक्सर फैसला हो जाएगा, लोगों के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो खैर ये सब चीज़ें भी इंशाल्लाह रखेंगे प्रोग्राम लूप के अंदर, अगर आप लोगों का ताबुन रहा और इंटरेस्ट रहा तो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक से लेकर के मैं बताना चाह रहा था, आप लोगों के नॉलेज में आना चाह रहा था। कोई और, अब मेरे ख्याल मेरे सेशन नहीं आता, कंक्लूड हो गया, इसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसा अलग से नहीं है जो मेरे ख्याल पब्लिक को बताना हो, लेकिन अगर पब्लिक का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा CPR के प्रोसीजर के लिए, हमें डमीज चाहिए होती हैं जो हमारे पास हैं, अगर आप लोग अप्रोच करेंगे IMI के तवसुस से तो हम सेशंस कराते हैं, उसके पूरा सेशन होता है CPR का, तो समझाना इस तरह से मुश्किल है बगैर डमी के इस तरह से। जी फरमाइए। किस खास तौर पर हार्ट अटैक का पूछ रहे हैं? जनरली पूछ रहे हैं, हार्ट अटैक में आप कुछ ऐसा खास दे नहीं सकते, जो हेल्पफुल है वो ये है कि किसी को सीने का दर्द होता है, हम लोग करते हैं प्रैक्टिस ये कि एक स्प्रे आता है GTN का स्प्रे, GTN का स्प्रे के नाम से आता है। तो अगर किसी को सीने का ऐसा दर्द होता है, जिन्हें सीने का दर्द होता है उनके पास घर में होगा मेरे ख्याल में, या एंजिसेट की गोली सुना होगा आपने, ज़बान के नीचे रख लें, ये गोलियाँ या ये स्प्रे जो दिल में खून का दौरान है उसको बेहतर कर देती हैं। तो अगर कहीं पे ब्लॉक भी हुई हुई है वेसल जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो ये थोड़ा सा बेहतरी उसमें पैदा कर देंगी। तो इनफैक्ट जब हार्ट अटैक डायग्नोज करना होता है तो हम यही करते हैं, पहले देखते हैं कि भाई स्प्रे या टैबलेट से बेहतर हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो घर के लेवल पर जो हम कर आप जो कर सकते हैं वो बेस्ट यही है कि एम्बुलेंस कॉल करें, और अगर है एंजिसिट की गोली तो ज़बान के नीचे रख दें। बाकी एम्बुलेंस वाला अगर आएगा तो वो फिर कुछ टैबलेट्स दे देगा। इसमें जी मैंने भी पढ़ा था ये, लेकिन जब सुना था तभी मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था कि यार ये चीज़ थोड़ी सी, देखिए हो क्या रहा है इस बात, हार्ट अटैक में हो क्या रहा है, दिल के पट्टों के ऊपर लोड ज़्यादा आ गया है, अब वो मर रहे हैं। तो खांसी करने से जो जो साइंस बताई गई थी उसके पीछे वो ये थी, जब आप खांसी करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के नतीजे में खून पुश होके जाएगा हार्ट तक, पर ये उल्टा है, जब थोरेक्स का प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट से ब्लड निकलता है। तो मतलब इसलिए अच्छा अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं बताई, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें किसी एक तरफ पे हमारी कम्युनिटी है नहीं, लेकिन जिन कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने सुना उन्होंने कहा कि इसका तो नुकसान ज़्यादा लग रहा है, सुनने में इसका नुकसान ज़्यादा लग रहा है फ़ायदा होने के बजाय, एकदम से आप ऑलरेडी जो डैमेज हो रहा है मसल उस पर और स्ट्रेस डाल रहे हैं। लेकिन अगेन मतलब मेरे पास का हतमी जवाब नहीं है अभी तक लगे हुए कार्डियोलॉजिस्ट का फैसला ढूंढने में। मैं यही बात शुरू में मैंने यही करने की कोशिश की थी, और आपके उस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि अगर मैं कहूँगा तो आप चले जाएंगे NICH या आप चले जाएंगे लियाकत, क्योंकि मेरी बात पर आपको थोड़ा एतबार हो गया। अभी एतबार बिल्ड करने में मुझे कोई आधा घंटा लगा, मैं यही बात हमेशा करता हूँ, मतलब मेरे घर में मेरी बहुत से है, मैं अपने घर में कोई भी टेस्ट कहने को कहूँ मेरे खानदान वाले करा लेंगे, कंसल्टेंट कोई कहेगा बड़ा उसकी बात पर शक करेंगे, तो उसकी वजह यही है कि हमें ट्रस्ट थोड़ा कम है डॉक्टर्स पर, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने काम किया है, मैंने सिविल में काम किया है, मैंने आ खान में काम किया, मैं तब्बा में काम कर रहा हूँ, मतलब मैं हर तरह से डॉक्टर्स को देख चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के डॉक्टर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और मैं कंपेयर यूँ कर सकता हूँ कि मैं कैंप्स करने गया हूँ इराक और ईरान के अंदर, और जिस तरह इराक में कम से कम और ईरान में भी किस हद तक कह सकता हूँ मेडिसिन प्रैक्टिस हो रही है, आप खुदा का शुक्र अदा करें, पता नहीं क्या मेडिसिन प्रैक्टिस हो रही है। मैं या तो मेरे सामने बहुत ख़राब डॉक्टर्स के पेशेंट्स आए कि मैं हैरान हो गया कि मैं मेडिकल स्टूडेंट था उस वक्त और मैंने कहा ये क्या देख रहा हूँ मैं, तो आपको अच्छे डॉक्टर्स मिले हुए। हाँ बस आपके डॉक्टर्स के अंदर शायद तहजीब अच्छी नहीं है, तो ये एक मसला है, ये मैं मानता हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अच्छा इस सवाल का जवाब के टेस्ट लिख के दे देते हैं। देखिए हम ना हम साइंस के लोग हैं, हमारा जो अंदाज़ है काम करने का वो हमारे औजार हैं ये टेस्ट, जो आपको लग रहा है ना कि चीज़ छोटी थी, मिसाल के तो आपकी बात कोट कर रहा हूँ कि यार मैं तो छोटे से बुखार के लिए गया था, ये इन्होंने इतना कुछ लिख के दे दिया, जब आपने हमारे पास आए ना तो हमारे पास कुछ और जहन में चल रहा होता है। और जैसे दिल की बात कर लें, अगर आप तब्बा आते हैं सीने का दर्द लेकर के, आप आते हैं सबसे पहले आपकी एक ECG होगी, आपके दो ड्रॉप्स भेजे जाएंगे, आपकी उसी वक्त एक एक्सरे होगा और एक ब्लड पैनल जाएगा। मेरे ख्याल में ये खर्चा सिर्फ टेस्ट वेस्ट का ही खर्चा कर लें तो 12-15 हज़ार तो कम से कम स्ट्रेट अवे हो गया, फिर ER का खर्चा जो ER में आप आए होंगे वो खर्चा, तो खर्चा एक अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें मुझसे ले लेना मैं कुछ आपको बता नहीं सकूंगा, मतलब इनके बगैर वो दौर नहीं है। हम भी बचपन में सुनते थे कि भाई हकीम होते थे नब्ज़ पकड़ के बता देते थे, ये समझ से बाहर है हमारे, ऐसी कोई साइंस नहीं है हमारे पास, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, कोई नहीं बता सके। अपने एक्सपीरियंस पे हर डॉक्टर थोड़ा बेहतर बता सकेगा, लेकिन इन औज़ार के बगैर हम बेकार हैं। जिस एक टेस्ट के मैंने आपसे तذکرہ किया, ये टेस्ट वो लोग सुनेंगे जिनके अपने पेशेंट्स या खुद जो है हार्ट अटैक रखा हो। ट्रोपोनिन एक लफ्ज़ होता है, ये केमिकल होता है जो दिल के पट्टों में होता है और दिल के पट्टों में ही होता है, अगर ये खून में मिलना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं अच्छा भाई ये पट्टा डैमेज हो गया जिससे केमिकल निकल के खून में आ गया। अब अगर ये मैं टेस्ट ना करूँ मैं कह नहीं सकता। तो हम टेस्ट के गुलाम हैं, हम टेस्ट के बगैर अंदाजे लगा सकते हैं बट डेफिनेटिव कुछ नहीं कह सकते, तो ये ज़रूरी है। अब क्या करें, होता ये है कि अच्छे ममालिक में कि भाई ये चीज़ सोची कभी नहीं सोचना पड़ता मरीज़ को कि भाई मैं अखराजात कैसे बर्दाश्त करूँगा अपने इलाज के, ये बड़ी ख़राब मसला है हमारे। तो खैर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि NICVD में अलहमदिल्ला हर चीज़ फ्री हो रही है, तो कार्डियक कम से कम मैं एलिमेंट से बोल रहा हूँ, कार्डियक एलिमेंट से, कि आप लोग कोशिश करें कि मलीर हॉल पे बताया इन्होंने काजम भाई ने कि यहाँ पे बना दिया इन्होंने एक सेटेलाइट तो वहाँ पहुँच जाए, ये फ्री है, इनमें ख़र्चा नहीं आएगा आपका, बस इसमें बस ये है लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगी तकलीफ जो है गवर्नमेंट सेटअप की होती है जो बेहतर हो रही है। मेरे पास कोई इसका तोड़ डायरेक्टली नहीं है। फिर आपने कहा कि कैंप्स कुछ अरेंज करने की, जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और मेरा आ जाने का मकसद भी ये था, मुझे बेसिकली आज यहाँ आना नहीं था, आज मेरे सीनियर हैं डॉक्टर मुदस्सर, उन्होंने आना था पर वो किसी वजह से नहीं आ सके, तो या तो ये कैंप या तो ये सेशन ना होता। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैं अवेलेबल था तो मैं आ गया। ये हम इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम अभी से नहीं, हम 4 साल से कोशिश कर रहे हैं इसमें कि कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़े। मैं आप ही लोग, चूँकि मेरा एक प्राइमरी काम कुछ और है, मैं लोगों का खून चूसता हूँ, हम ब्लड डोनेशन के लिए जगह जगह जाते हैं, इस चीज़ के लिए ब्लड डोनेशन के लिए हम कहीं कई जगह गए हैं, और लोगों की अवेयरनेस हमने देखा कि नहीं है, खून देते हुए डरते हैं, घबराते हैं, नहीं देते हैं, तो हम बढ़ाना चाह रहे हैं इस पर, हम काम कर रहे हैं इस पर। कम्युनिटी के लिए की सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग अगर चाहते हैं ये चीज़ें, देखिए ये चीज़ें आप लोगों के जानने से बेहतर होंगी, आपने आज कुछ चीज़ें सीखी अपनी सेहत के बारे में, सिर्फ बोलना मकसद नहीं था, मैं उम्मीद करूँगा कुछ ना कुछ आप में से लोग ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अप्लाई करें, कोई एक्सरसाइज शुरू कर देगा, कोई मीठा कम कर देगा, कोई नमकीन कम कर देगा, स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, तो इसके इफेक्ट माशरे के अंदर दिखेंगे, आपके घरों के अंदर दिखेंगे, इसमें आपका फ़ायदा है। मेडिसिन में एक बड़ा हमारा प्राइमरी रोल ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, हम लोगों को बताएं कि किस तरह अमराज से बचा जा सकता है, और वो यही तरीका है, और ये होंगे इंशाल्लाह बेहतर। आप लोग अगर एक पूरा सेटअप बना हुआ है यहाँ पर तो आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट, हम लोग का ताल्लुक IMI से है, इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल, हमारा जो हेड ऑफिस है हमारा वो नुमाइश पे होता है। इनफैक्ट अगर किसी को इस मामले में हेल्प चाहिए हो, हम वहाँ से भी कोशिश करते हैं, हमारे वहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट्स आकर के बैठते हैं, तो वहाँ आप लोग आ सकते हैं अपने मरीजों को दिखाने के लिए। वो हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है जो कि इंशाल्लाह बेहतर होता चला जा रहा है। और बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया CPR वगैरह के बारे में, ये चीज़ें अगर आप लोग चाहें मेन स्ट्रीम करना तो कर सकते हैं। मेरे पास मेडिसिन में ये चीज़ कहना गलत है कि कोई एक ही तरीका इलाज करने का, दुनिया में अलग अलग तरीक़ों से अमराज के इलाज हो रहे हैं, जो आप कह रहे हैं सब आता है ऑल्टरनेट मेडिसिन के अंदर, हिकमत हो गया, रेकी है, जितने भी सारे हैं ये सब ऑल्टरनेट मेडिसिन है, और ऐसा नहीं है कि इनके फ़ायदे नहीं होते, आप एक एग्जांपल है इसकी कि फ़ायदा हुआ माशाल्लाह। लेकिन आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, ये अहम चीज़ है, दिखाते रहें, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आपका एवेल्यूएशन है कि भाई दिल कितना फ़ीसद धड़क रहा है, इको वगैरह जो होता है वो तो हिकमत में नहीं हो सकता ना, तो एक आपके पास नहीं, इको तो टेस्ट है, वो तो कोई भी कर सकता है, हाँ वो होने चाहिए, पता होना चाहिए। अब जैसे आप दिल की धड़कन कम होने की बात कर रहे हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट को आपके पता होनी चाहिए है, मैं सिर्फ ये इतना अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप जो इलाज कराएं। कौन कौन की गोली ही से कम हो रहे हैं ये हार्ट बीट, लेकिन ये कोई और अगर वजह से हो रहे हैं, जो दिल के अटैक तो हुआ था, दिल के पाथवे में कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो इलाज आपको सूट कर रहा है यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। जी जी जी, मैं एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शुगर का कंट्रोल भी ऐसी है, जो इनिशियली शुगर बढ़ी हुई होती है वो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाती है। आप एक्सरसाइज, वही जो मैंने कहा 20 मिनट की आप एक एरोबिक एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत थोड़ा, यानी कि दीना धड़कन आपको महसूस हो और पसीना निकले, रोज़ाना की 20 मिनट की एक्सरसाइज, और आपकी डाइट कंट्रोल, यानी कि शुगर आप कट बैक करें, शुरू की शुगर इसी से कंट्रोल हो जाती है, फिर हम दवाइयाँ शुरू करते हैं उससे भी नहीं। डाइट बस, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं, बेशक हैं, सही कह रही हैं, स्ट्रेस के सिचुएशन में शुगर बढ़ती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके जिस्म, वही जो हमने बात की, केमिकल्स रिलीज करता है, उनमें से एक केमिकल का काम है शुगर को बढ़ाना, तो ये ऐसा होता है बेशक। तो स्ट्रेस लाइफ, तो वैसे स्ट्रेस लाइफ हर चीज़ से लिंक्ड है, डायरेक्ट है, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ने से स्ट्रेस लाइफ लिंक्ड है। लेकिन मतलब शुगर कंट्रोल करने का तरीका, बजाय ये हम गिनने के क्या क्या चीज़ें शुगर बढ़ा रही हैं, अगर हम उसके इलाज समझ लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा, वो सिर्फ ये है कि अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और जो दवाएं शुरू कर रही हैं उनको लेते रहना है, दवाएं पर आप स्किल की जाती हैं, अगर इन दवाओं से ठीक नहीं हो रहा तो मज़ीद दवा बढ़ाएंगे, फिर मज़ीद दवा बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, तो ये स्टेप वाइज होता है। और जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मैंने आपसे कहा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, एक हमारे बहुत अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर अली असगर, ये फातमिया में बैठते हैं, ये लियाकत में ही बैठते हैं, इन दो जगह तो यकीनी तौर पे बैठते हैं, तो जिनके घर में डायबिटिक लोग हैं और वो किसी डायबिटोलॉजिस्ट को या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को नहीं दिखा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर अली असगर से लूप में आ जाएँ, ताकि सालाना आपके एक रिव्यूज़ होते रहें। जी फरमाइए। जी वसीम अकरम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो तो टाइप 1 डायबिटीज़ थी ना उसकी, वो तो जेनेट, हाँ बिल्कुल, उसने उसको बहुत सारे इशूज़ थे वसीम अकरम के हेल्थ के, उसने इतना ज़बरदस्त डाइट कंट्रोल रखा है और एक्सरसाइज करता रहा है। देखिए ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ये अमराज ऐसे नहीं है जो ज़िंदगी में आपको ज़रा सा भी लिमिट करेंगे, ज़रा सा भी लिमिट नहीं करेंगे, प्लीज़ ये बात समझिए। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, ये चीज़ें ये आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पर आपको लिमिट नहीं करेंगे अगर आप इन्हें कंट्रोल में रख सकें। अगर आप इन्हें कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब करेंगे, ये चीज़ समझने की। बड़े मैनेजेबल डिजीज़ हैं, बहुत मैनेजेबल स्टेट्स हैं ये, पर लोग देखते नहीं और इंतज़ार करते हैं ख़राब होने का। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि आजकल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ इस लेक्चर से फ़ायदा मिला होगा आपको। मैं ये नहीं समझता कि यहाँ बैठ करके अभी सब कार्डियोलॉजिस्ट बन के उठेंगे, लेकिन इंशाल्लाह खुदा ना करे किसी घर में अगर ऐसी कैफियत हो तो आप जल्दी अब पकड़ पाएंगे और सही फैसला लेने में यह उम्मीद है कि आपको हेल्प देगा। अगर आप समझते हैं कि इस किस्म के सेशंस आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या आपके घर वालों के लिए फ़ायदेमंद हैं, काजम भाई से कॉन्टैक्ट करें, इस किस्म के मज़ीद सेशन रखे जा सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो इसमें एक्चुअली एक्टिव रोल अदा कर रहे होते हैं। बाकी ये कि IMI वगैरह का जो कॉन्टैक्ट है वो इनके पास छोड़ दूंगा, और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है आपके पास, तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई हेल्प चाहिए हो तो आप काजम भाई से बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, एक सलावत भेज दीजिए।